ਸ੍ਰੀ ਬਰ ਸਮਾਨ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹਮਾਨੇ ਸਮੇ ਸਾਰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਾਰ ਪਰਮਾਗਮ ਉਸਕਾ ਗਿਆਨ ਤੱਤ ਪ੍ਰਗਿਆਪਨ ਅਧਿਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਮੇ ਸੁਭ ਪ੍ਰਣਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸਮੇ ਕੱਲ ਗੁਨਿਆਸੀਮੀ ਗਾਥਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰਮਿਕ ਗਾਥਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਸੀਵੀਂ ਗਾਥਾ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੇ ਰੂਪ ਮੈਂ ਆਈ ਥੀ ਉਸਕੀ ਅੰਤਿਮ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਥੀ ਕਿ ਯਦਿ ਮੂਹੇ ਕਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਪਾਪਾਰੰਭ ਤਿਆਗ ਦੇ ਸਭ ਤਿਆਗ ਪਾਪਾਰੰਭ ਸੁਭ ਭਾਵ ਮੈਂ ਉਦਤ ਰਹੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇ ਮੂਹ ਤੋ ਸ਼ੁੱਧਾਤਮਾ ਕੋ ਨਾ ਲਹੇ ਗਾਥਾ ਮੈਂ ਤੋ ਇਤਨਾ ਕੜਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਥਾ ਗਾਥਾ ਮੈਂ ਤੋ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਯਦਿ ਵੋ ਮੂਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇਗਾ ਤੋ ਸ਼ੁੱਧਾਤਮਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਛੋੜ ਦੇ ਤਕਤਾ ਪਾਪਾ ਰੰਭਮ ਕਲੀਅਰ ਥਾ ਨਾ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵ ਮੈਂ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਉੱਚ ਕੋਟਿ ਸੇ ਉੱਚ ਕੋਟਿ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਿੱਤ ਰਹੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਯਦਿ ਵੋ ਮੋਹ ਕਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਸੇ ਵੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧਾਤਮਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਆਪਣਾ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸੁਮਨ ਜੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੁੱਧਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਮਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ ਉਹ ਮਾਨੀ ਤੋ ਸਿਆਵਾਸ ਔਰ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ ਤੋ ਭਾਗਯ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੇ ਹਮਕੋ ਭਗਵਾਨ ਆਤਮਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਤੀਵਰ ਸੰਕਲਪ ਜਗਾ ਸੰਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾ ਸੰਕਲਪ ਜਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਮੇ ਵੋ ਸੰਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਗੀ ਉਸ ਸ਼ੁੱਧਾਤਮਾ ਕੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋਗੀ ਉਸਕਾ ਜੋ ਬੀਚ ਕਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਵੋ ਅੰਤਰਮ ਮੁਹੂਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਸੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਜੀਵ ਕੀ ਕਿਆ ਸਥਿਤੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਸਕਾ ਵੋ ਵਰਣਨ ਹੈ ਵਹਾਂ ਸੇ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਾ ਅਬ ਤੋ ਜਬ ਸੁਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਕਰਨ ਲਬਧੀ ਕੇ ਅੰਤ ਮੈਂ ਹੋਗਾ ਕਰਨ ਲਬਧੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਪਾਂਚੋਂ ਲਬਧੀਆਂ ਤੋ ਮਿੱਥਾ ਚੁੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਬਸੰਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਮਿਤ ਚਰਿਤ੍ਰ ਵਾਲੀ ਲਬਧੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋਕੋ ਕੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਕਿ ਏਕ ਵੋ ਗੁਣਸਥਾਨੋ ਕੇ ਨਾਮ ਵੀ ਅਪੂਰਵ ਕਰਨ ਅਨਵਿਰਤੀਕਰਨ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਵੀ ਅਨਵਿਰਤੀਕਰਨ ਅਪੂਰਵ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਅਧਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਕਰਨ ਆ ਗਏ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ ਬੇਚਾਰਿਤ੍ਰ ਮੋਹੇ ਕੋ ਨਾਸ ਕਰਨੇ ਕੇ ਹੈ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਮੋਹੇ ਕੋ ਨਾਸ ਕਰਨੇ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋ ਹੀ ਮੋਹ ਹਮੇ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਅਭੀ ਤੋ ਇਸੀ ਮੋਹ ਕੋ ਨਾਸ ਕਰਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੌਣ ਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੋਹ ਕੋ ਨਾਸ ਕਰਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵੋ ਸਾਰੀ ਪਾਂਚੋਂ ਲਬਧੀਆਂ ਮਿੱਥਾਤਵ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਔਰ ਵੋ ਮਿੱਥਾਤਵ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਥਾ ਘਬਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਛੇ ਸੁਮ ਲਬਧੀ ਕਿਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋ ਅਲੱਗ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਜਬ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਓ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜਬ ਮਿੱਥਾਤ ਕਰਮ ਕਾ ਅੰਤ ਕੋੜਾ ਕੋੜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਤਬ ਛੇ ਸੁਮ ਲਬਧੀ ਕਾ ਸੰਪਰਕ ਆਏ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅੰਤਾ ਕੋੜਾ ਕੋੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸਕੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਏ क्या हुआ कि 70 कोड़ा कोड़ी में से 69 कोड़ा कोड़ी गई, कोड़ा कोड़ी के सागर बरस नहीं, दिन नहीं, समय नहीं, सबका ध्यान इतनी गई, 69 गई, 69 गई। मैं कहता हूं भैया अभी एक कोड़ा कोड़ी सागर से थोड़ी कम तो रही है, अंता कोड़ा कोड़ी है आए ना, तो अंतर माने उसके भीतर आ, ये बहुत कम नहीं, बहुत होते हैं कोड़ा कोड़ी सागर हैं? जब आएगी, अरे जब हमारी शक्ति आ गई तो छोड़ो, हमारे अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण से ज्यादा हमारी मोह दर्शन मोह की स्थिति है, होती तो हम आत्मा की बातें ही कर पाते। ये न वार्ता ही श्रुता वाले ने तत्प्रति प्रीति चित्ते ने, ये न वार्ता ही श्रुता निश्चित हमसा भवे भव्यो भावि निर्माण भाजनम। इसलिए वो अंता कोड़ा कोड़ी की बात, इतनी स्थिति रह जाएगी। अब मैं उल्टी कहता हूं कि अंतः कूड़ा कोड़ी तक रहने वाला मिथ्यात्व मौजूद है, और उस वक्त हमको उस मिथ्यात्व के नाश के पुरुषार्थ का काम आरंभ करना है, समझना है। क्यों? वो जब हमारी करण लब्धि पूरी हो जाएगी, जब सम्मेलन हो जाएगा, तब हम शुरू करेंगे। अरे शुरू तो तब ही होगा, लेकिन तुझे तब करना है कि अब करना है? यहां से वहां तक कैसे पहुंचेगा? इसलिए मैं पहले इस पर ऐसा व्याख्यान दिया करता था कि एक होता है मोक्ष का मार्ग और एक होता है मार्ग का मार्ग। हमारी समस्या मोक्ष मार्ग की नहीं है, हमारी समस्या तो मार्ग के मार्ग की है। क्यों? कैसा यहां से बंबई जाना हो मोरानी जी, कोई रास्ता हो तो बताओ। अरे क्या क्या, प्लेन में बैठो, डेढ़ घंटा में बंबई, कितना सीधा सच्चा रास्ता है। कैसे प्लेन पर फिर क्या करें? सो जाना, फिर कुछ नहीं करना है, फिर जो कुछ करेगा वो प्लेन करेगा, वो चलने का काम फिर तुम्हें नहीं करना है। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम जहां बैठे हैं वहां से प्लेन में कैसे बैठे हैं? इतना आसान नहीं है। इतना पैसा कहां से लाएं, जितना उसके टिकट के लगते हैं, यहां से जाएं, हम एक इंटीरियर में बैठे हैं तो यहां से चल के बस से बड़े शहर में जाएं, शहर से फिर और चलें, फिर सीन बदलू करके फिर एयरपोर्ट पहुंचे। क्यों? वो एयरपोर्ट में पहुंच जाए तो ऐसे ही बैठ जाएंगे जैसे हम जाके बस में बैठ जाते हैं। हम कितने नेक होते हैं तुम्हें मालूम नहीं है? हम लाखों किलोमीटर प्लेन में घूम चुके हैं, लेकिन हमें अभी कुछ समझ में नहीं आता ज्यादा चक्करवानी। खुद हमारे तो साथी लोग होते हैं तो बोल ले जाते हैं, तो वहां चले जाते हैं, उंगली पकड़ के चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। नए नए नियम बनते रहते हैं, नई नई दिक्कतें खड़ी होती रहती हैं। है? इधर हम एयरपोर्ट में घुसते ही महामूर्ख दिखते हैं, थोड़ी बहुत समझदार दिखती है तो हमारी पत्नी दिखती है, सब कुछ वही करती हैं सब, मैं कुछ नहीं कर रहा, सामान भी वही ढोती हैं, टिकट भी लें, जाके बोर्डिंग कार्ड लें, सामान तुलवाएं, जो भी करना हो। अपन तो जाकर वो व्हील चेयर पर बैठ जाते हैं और फिर आराम से वो व्हील चेयर वाला वो प्लेन की कुर्सी पर बैठा के आता है। तो अपनी समस्या वो है, उसकी चर्चा वो कर रहे हैं कि अभी वो उससे वहां तक शुद्ध भाव तो है नहीं। टोटल मंजी के गोमट सार में भी ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ है, उसमें ये लिखा है कि जो करण लब्धि में जो परिणाम है वो तो बहुत ही अच्छे होते होंगे ना मोटानी जी, तो शुद्ध भाव है क्या? शुद्ध भाव है, शुद्ध उपयोग तो शुरू ही नहीं होता, वो तो खत्म हो जाएगा तब होगा। अब जो भी है वो उस शुभ भाव में ही उसी में से हैं, और उसी के लिए वो कह रहे अविनाशी दास जी कि वो अशुद्ध भाव, शुद्ध भाव माने अशुद्ध भाव है, तो उसमें तूने शुद्धता का अंश माना कि नहीं माना, नहीं मानते हैं तो एक दिक्कत है। क्यों सी कि वो जो मिथ्यात्व कर्म का क्षयोपम उपसम जो कुछ भी हुआ अनंतानबंदी का मिथ्यात्व कर्म का, वो कैसे हुआ चल नहीं है ही नहीं शुद्ध भाव, तो फिर वो हुआ तो उसी बीच है, जब हमको सम्मा दर्शन हुआ तो उसके उसी के पहले हुआ ना वो खत्म, उस वक्त तो मिथ्यात्व का उदय नहीं है ना, उस वक्त तो मिथ्यात्व का अभाव जैसा भी होना था छह छयोपम रूप, उसको ही हम अभाव ही नाम से कहें, है ना, तो वो तब तक तो था ना, तो वो कैसे तो शुभ भाव से मानना पड़ेगा फिर। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो शुभ भावों के बीच में वो हमारे शुद्धता का अंश है, उसकी वजह से है। गुरुदेव कहते थे, बहनसी कहती थी कि वो दृष्टि का जोर अंदर में आगम ज्ञान से गुरु के मुख से सुनकर जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हमारे ज्ञान का गेय बना, वो हमको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि सारे जगत को हम निछावर करने के लिए तैयार हैं उससे, तो सारे जगत से हमने दृष्टि हटाकर अपने आत्मा में लगा, ये सब प्रायोग लब्धि में होता है, और हो करके जब हम कहें लब्धि में चढ़े, अब उसमें अब आपका वो करुणा नियोग है ही धर्म का कांटा, तुमने वो तो कहेगा कि नहीं नहीं हम तो बिल्कुल नहीं, हम तो एक समय पहले तक भी नहीं माने, हम तो उसके बारे ही ना, तुम्हें नाम जब रखना हो रख लेना, लेकिन वो है ना कुछ। गुरुदेव कहते हैं कि उससे उस दृष्टि के जोर से उसमें मिथ्यात्व का नाश हुआ, कि जिस दृष्टि के मात्र जोर से वो मिथ्यात्व का नाश हो गया तो कितना कमजोर है वो, और हम कितने ताकतवर हैं। वो असली चीज तो अभी आई नहीं, वो हथियार तो अभी खुला ही नहीं, वो चक्कर तो अभी चलाया ही नहीं है? और उसके पहले इसका नाश हो गया। अब अपनी बात क्या चलती, वो कहते हैं वो मोह का नाश नहीं हुआ, यदि वो दर्शन मोह के नाश नहीं हुआ कह रहे, और यहां कह रहे शुभ चारित्र में उद्यत रहे हैं, तो ये तो बहुत सरल भाषा है, पढ़ना भैया इस छंद को कितने का कौन सा 79, लेकिन सुनना ध्यान से सब।
सब छोड़े पापारंभ शुभ चारित्र में उद्यत रहे, पर नहीं छोड़े मोह तो शुद्धाते माँ को नाल।
क्या इसमें समझाने के लिए कुछ है, सीधी सीधी चार बातें कही हैं, सारे पाप छोड़ दिए, अब क्या रहेगी, इस पर बहुत व्याख्यान हो सकते हैं, सारे पाप गिनाओ और फिर उनको छोड़ा हुआ है बताओ, क्यों पूरी किताब लिखी जा सकती है सत्ता पाप आरंभ हम इस पर, और शुभ भाव में उद्धत रहे इस पर भी एक किताब लिखी जा सकती है, और नहीं छोड़े मोह इस पर भी एक किताब, तीन किताबें तो लिखी गई। तो तीन बात, दो तो हो गई, ऊपर वाली दो कौन सी हैं, हाँ वे तो हो गई, मैं तूने पापारंभ तो छोड़ दिया और शुभ भाव में तो आ गया, अब तू अभी भी मोह रह गया, अरे वो मोह यदि भी परिभाषा बताएंगे तो तुमको ऐसे लगे इसने क्या दम है, इसके लिए क्या करना है, मालूम क्या करना है, वो मोह क्या है, ये त्रिकाली ध्रुव अपना भगवान आत्मा है ना, जो गुरुदेव सिंह ने अपन को दृष्टि का विषय बताया है, ध्यान का ध्येय बताया है, अभी उसकी व्याख्या में नहीं जाऊंगा गहराई में, पर वो उसके मैं उसको ज्ञान पूर्वक उसे अनुभूति पूर्वक कह लो, उसे ज्ञान पूर्वक वो ज्ञान का ये बने और बस ये मैं हूं, बस इतना ये मोह का नाश है, बस खत्म, ये नहीं हुआ और कुछ नहीं, समझे ना। अब वो अभी विद्वान है, वो आत्मा जी दिखा नहीं, पर आत्मा की जो चारों तरफ लगे हुए जितने भाव हैं पचासों प्रकार के, वो सब हमें दिखाई देते हैं और फिर उन्हीं में से हम धर्म कर लेते हैं। वो जो होगा ना, वो जो त्रिकाली ध्रुव जो दिखेगा और उससे जो मोह का नाश होगा, तो शुद्धोपयोग तो भैया पैदा होगा, तब वो उपाय कहां है, वो तो होगा तब होगा। आप कहते हो ना चौथे गुण स्थान से शुद्ध उपयोग, चौथे गुण स्थान से पहले नहीं है, तो वो चौथा गुण स्थान होगा तब होगा ना। बहुत पहले विद्वत परिषद की एक मीटिंग बीना में हुई थी, बहुत माने कितना, कम से कम 55 वर्ष पहले बीना में एक विद्वत परिषद की मीटिंग हुई थी, और उसमें सब्जेक्ट क्या था मालूम आपको, कि पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने एक जैन वो तत्व मीमांसा नाम की किताब लिखी थी, और वो पहले सोनगढ़ में पढ़ी गई थी, भाग्य से हम भी वहां मौजूद थे, तो दो दो, दो चार पांच विद्वान बैठते थे, तो हमें भी हमारी एंट्री भी उसमें थी, गुरुदेव के सामने पढ़ी जाती थी और हम भी उसमें पूरी हमने सुनी थी। तो फूलचंद जी साहब की वो किताब फूलचंद जी को उसमें पढ़नी थी, और विद्वत परिषद की कार्यकारिणी की मीटिंग थी, और वो विद्वत परिषद से पास कराना चाहते थे, गुरुदेव से भी पास करा ली और अब विद्वत परिषद से भी पास करा लें और फिर छापें, तो 90% झगड़ा में पड़ गया। कितना बड़ा काम था, सोचो आप, छोटी मोटी बात नहीं बता रहा हूं मैं। तो पूरी विद्वत परिषद के कम से कम 70-75 विद्वान थे वहां मौजूद थे, और मैं अशोकनगर में था, तो मेरे को शायद निमंत्रण था या नहीं था मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जाने वाला नहीं था, करीब मैं 22-23-24 वर्ष का हूं वापस खत्म, उसी तारीख मारीख होगी हमारे अखिल के पास में वो मीटिंग की। तो हमारे वहां पर समाज के अध्यक्ष थे मोतीलाल जी चौधरी, उन्हें दाऊ दाऊ कहते थे, और वे हमारे मौसाजी भी लगते थे, तो वो हमको लेके गए वहां, और उनकी रिश्तेदारियां भी थी और वो बड़े आदमी थे, तो वो हमको लेके गए, तुम चलो हमारे साथ, हमारे मौसाजी थे, तो हम मौसाजी कह रहे ले गए। तो सारे विद्वान का शाम का भोजन, वीणा का जितने भी जैनी हैं, सबके पास सैकड़ों एकड़ जमीनें हैं खेती की, बहुत तो बहुत बड़े सेठ थे, उनके जो बहुत बड़ी जमीन का एरिया था, वहां बाग बगीचा था, वहां पर उनने भोजन रखा था सबका, चूरमा बाटी, और शाम को सबको खाने वहां ले गए थे। हम तो उसके बाद पहुंचे, तो हम उसमें नहीं गए थे। अब मंदिर में शाम को प्रवचन होना था, और मंदिर में सारी जनता बैठी थी, हम भी उसमें बैठे थे, वो हमारे दाऊ भी बैठे थे, और पंडित लोग की पार्टी पूरी की पूरी आई नहीं थी। पंडित बंसीधर जी, न्याय अलंकार नाम सुना, इंदौर विद्यालय के प्रिंसिपल थे और गोपाल दास जय बरैया के शिष्यों में से, उनका भी एक नाम था, पंडित मक्खनलाल जी, बंसीधर जी, देवकी नंदन जी, ये सब एक एक कैटेगरी के, उनका प्रवचन वहां होना था। 15 मिनट लेट हो गए, आध घंटा लेट हो गए, पंडित लोग नहीं, सब लोगों में आकुलता होने लग गई, सब कहने लगे ये क्या होता है, ऐसा क्या होता है, ऐसी सब लोग बैठे हैं, ये हैं ये हैं। तो वो हमसे दाऊ बोले कि पंडित जी तुम बैठो, करो प्रवचन, तुम शुरू करो। हमने कहा तुम तो बैठा लोगे और फिर पंडितों की पार्टी आएगी तो हमको उठना पड़ेगा, ये सब हमको उठा देंगे। और हमने एक दोहा पढ़ा है
कि रही मन तहां न बैठिए जहां कोई दे उठाए।
तो लोगों में जरा रोष गुस्सा आ गया था ना भाई जी, तो नहीं क्यों कौन उठाएगा कैसे उठाएगा, वो बुझाऊ बोले कैसे उठाएगा कौन उठाएगा,
तुम जिम्मेवार हो गए। हाँ हम उठाएंगे नहीं समझ लेना,
हम बैठ गए।
पांच ही मिनट सब पूरी पूरी पार्टी
सन्नाटा छप गया कि एक छोकरा बैठा है और वो प्रवचन कर रहा है और सारी पंडित मैंने आगे आगे करके धीरे धीरे बैठे।
मेरा कोई ज्यादा परिचय नहीं था पंडितों से, बाई फेस, वे भी मुझे नहीं जानते थे, मैं भी उन्हें बाई फेस नहीं जानता था।
ख्याल में आई ना,
नाम तो सबके सुन रखे थे, मैं चुपचाप प्रवचन करता था, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। वो बात मैंने उस वक्त क्या बताई थी वो मैं पांच मिनट में अभी आपको बताना चाहता। उस प्रवचन में मैंने क्या कहा था वो 55 वर्ष पुराना प्रवचन बता रहा हूं कि हम सब कहते हैं, एक पहले भजन बहुत चलता था हमारे यहां कि मोह को तालो लगो है बड़ो और सम्यक कुंजी से हे कुंजी लाल तू उसे खोल क्यों नहीं लेता। कुंजी लाल किसी ने बनाया था, किसी कुंजी लाल ब्रह्मचारी ने वो भजन बनाया था कि इस भगवान आत्मा पे मोह का बड़ा ताला लगा हुआ है, तो वो कुंजी लाल जी कहते हैं कि सम्य दर्शन रूपी कुंजी से तू उस मोह के तालों के खोल क्यों नहीं लेता। ये भजन बहुत चलता था।
मैंने कहा कि इतने कह तो दई कि सम्य दर्शन रूपी कुंजी से वो ताला खोल लो, लेकिन कुंजी है कहां, कुंजी तो ताले के अंदर बंद है, वो चटकना ताला है, वो मगज के अंदर में ताबी रख दी और ऊपर से चटकना ताला लगा दिया, अब कह दे खोलो का दे, अब तो वो टूटे गई, अब वो ताला खुलेगा नहीं, क्योंकि तुम कुंजी कह रहे हो, कुंजी तो मिथ्यात्व का नाश होगा तब वो सम्यक्त पैदा होगा।
सब ने हाँ सही बात है, पंडितों ने सुना इनका बात कैसी, बात तो सच्ची है।
इसलिए सम्यक दर्शन उसका कोई रास्ता नहीं है, ये तो फल है, आप समझे ना, वो तो मिथ्यात्व के नाश का फल है सम्यक दर्शन, मिथ्यात्व के नाश का कारण नहीं है। उस दिन मैंने ये बात की,
मैंने कहा ये बताओ रावण को किसने मारा था, लव ने के कुछ ने,
आप लोग भी सोच सकते हो,
बता सकते हो तो बताओ,
ये क्या बात करते हो, जब रावण मरा था तब लवो कुछ पैदा ही नहीं हुए थे, उन पर आरोप कैसे लग सकता है,
तो मिथ्यात्व का नाश किसने किया था, कि सम्मा दर्शन ने, कि तब तो भाई साहब पैदा ही नहीं हुए थे,
काय को उन पे आरोप लगाते हो।
और फिर मैंने उसे पूरा सब जो न्याय शास्त्र के अर्थशास्त्री के वहां वहां के वो धर्म तैयार थे सब, और मैंने सब दिए, सब विद्वान एकदम चकाचौंध होके रह गए, और बाद में आके हरेक ने मेरे को बधाई दी, बहुत 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 धन्यवाद सब पंडितों ने, यह मेरा मेला पहला परिचय विद्वत परिषद की मीटिंग में। अब वो पंडित भूलचंद जी की किताब यहां विद्वत परिषद में पढ़ी जानी थी, अब मेरी एंट्री हो गई थी है ना, तो मैं था तो पंडित जी से मैंने कहा कि पंडित जी ये वही किताब है ना जो सोनगढ़ में पढ़ी थी आपने गुरुदेव के सामने,
बोले चुप रहो चुप रहो।
उनने मेरे को एकदम चुप कर दिया, यहां किसी से कहना नहीं, क्योंकि इन्हें ये मालूम पड़ेगा ये सोनगढ़ में पढ़ा करके आए हैं, पास करा के लाए हैं, और अभी हमसे पास कराना चाहते तो ये लोग फिर पास नहीं करेंगे,
फिर वे तत्व के आधार पर निर्णय नहीं करेंगे, उसकी क्वालिटी के आधार पर निर्णय नहीं करेंगे, सब उसमें वो चीज हो जाएगी। तो उनने मुझे रोक दिया और पूरी किताब फिर दोबारा मैंने वहां सुनी, वो तत्व मीमांसा जो वहां सोनगढ़ में सुनी थी और उसने सुनी थी। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि भाई एक विषय तो कितना महत्वपूर्ण है कि हमें अभी मारक का मारक है ना, कहां से जहां हम सब लोग खड़े हैं और जहां सम्य दर्शन तक पहुंचना है उसके पहले हमें जो भी होना है करना है, कहोचा होना है, कहोचा पांच लब्धियां होंगी चाहे करेंगे, अभी झगड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता हैं? तो उनमें जिन भावों से वो मिथ्यात्व का छह छयोपम उपशम होगा और फिर वो ऑप्शन सम्यक सबसे पहले होगा तो वो कौन से भावों से होगा? शुद्ध भावों से या शुभ भावों से? शुभ भाव से तो कह नहीं सकते। तो लोग मेरे से कहते हैं वे सिद्ध कर रहे हैं कि उसे होगा ये होगा, तो तुम कह रहे हैं कि बिल्कुल रंच मात्र भी शुद्धोपयोग के अलावा शुभ शुभ भाव किसी कीमत पर भी स्वीकार नहीं है। तुम लोग पंडित आपस में मिल तो लो। एक ट्रेन एक कहता है कि वो उससे होगा काम और दूसरा कहता है सुबह ये कहता कि नहीं। क्या गाथा पढ़ो भैया, कौन सी 79? हाँ,
सुबह चारित्र में उदत रहे पर नहीं छोड़े मोह तो सुधात माँ को नाल।
तो कि वो कह रहे कि उसी में होगा ना काम, तो शुभ भाव से ही होगा ना। मैंने कहा भैया तुम जरा ध्यान से सुनो, हम दोनों एक ही बात कह रहे हैं। ये कैसे कह रहे हैं? वे शुभ भाव की महिमा स्थापित कर रहे हैं और तुम उसकी धुनाई कर रहे हो। मैं ये कह रहे हैं ना कि तुमने उस विशुद्धता में शुद्धता मानी के नहीं मानी, यानी वो शुद्धता है और काम वहां भी शुद्धता से ही हो रहा है, शुभ भाव से नहीं हो रहा है। बोलो क्या कहां? दोनों की एक संधि है कि नहीं? दोनों में कहां विरोध है? क्यों विकल्प में उलझते हो? कठिन सरल हो तो अलग बात करो, वो हम सब अलग नहीं बदलेंगे, शांति से सब बात कर लेंगे। लेकिन बात तो एक ही है ना, इसमें मतभेद रंच मात्र भी कहीं नहीं है। तो मोह को नहीं छोड़े तो शुद्धता को ना लहे, क्लियर कहा ना? तो अब कहते छोड़ो ना और सब काम, अब तुम सबसे पहले मोह के छोड़ने की विधि बताओ बस खत्म। इसलिए ये अश्विनी गाथा आ गई, ये अश्विनी गाथा की भूमिका है। अब तो तुम मोह के नाश करने की विधि बताओ कि ये सारे पाप छोड़ो, शुभ भाव करो, ये सब एक तरफ रखो। अब तुम मोह का नाश कैसे हो वो बात करो। ये शिविर काय का है, मोह का नाश कैसे हो इसका है। पाप भाव कैसे छोड़ो, पुण्य भाव कैसे करो, इसका ये शिविर नहीं है क्या? वो ये जो अश्विनी गाथा आने वाली है उस पर मैंने 25 पेज लिखे हैं इस किताब में, तुम चाहो तो पढ़ के जाना 25 पेज, और किसी में नहीं लिखे होंगे इतने पेज। दो लाइन की गाथा है वो, तो तीन लाइन की टीका होगी, वो चार पांच लाइन की ज्यादा नहीं है मतलब। लेकिन उसमें कितना माल है, कितनी चर्चा है। अब वो चलेगी, अभी शुरू होने वाली है थोड़ी देर में, अब उसमें प्रवेश करने का रास्ता मैं खोज रहा हूं है? कहां से प्रवेश करूं? अभी एक अड़चन और आ गई है क्या? कि जैसे नाचार्य की टीका में इस 79 और 80वीं गाथा के बीच में दो गाथाएं और हैं। अभी दो गाथाएं फिर छोड़ थोड़ी सकते हैं, उन्हें भी पढ़ना पड़ेगी ना, इसलिए पहले दो गाथाएं 5-10 मिनट में निपटाएंगे, घबराना नहीं, जल्दी से जल्दी वहां पहुंचेंगे। बोलो पढ़ो।
तब संजय माप से दो सुदो सका पवग मग करो हमरा सुरेंद्र महिदो जीव सो लोह सियरथो तम देव देव देवम जदि वरवसं गुरुं दिलो यस पड़मंति जे मनुस्सा ते सुखम अखयम जन्ति ओ स्वर्गे अरे अपवर्ग पथ दर्शक जिनेश्वर आप ही लोकाग्रत तप संयमी सुर असुर वंदित देवेन्द्रों की देवयति भर ब्रसव तुम त्रैलोक्य गुरु जो न में तुम को वे मनोज सुख संपदाक्षल
इतना सस्ता लौटा दिया जो न में तुमको वे मनोज संपदा अक्षय ये दोनों गाथाएं मंगलाचरण की है। एक बात बहुत समझने जैसी है कि अमृतचंद की टीका जो आत्मख्याति है उसमें समय सार में 415 गाथाएं हैं। एक इतनी जितने प्रचन सार है ना इसका हिसाब लगाना नहीं है और उनकी में 443 है मैंने एकदम 30 गाथाएं जाए ऐसे इसमें भी गाथाएं ज्यादा हैं अब वो बीच बीच में आती हैं तो देखो इसमें नंबर डाला ना पांचवी छठवी 79 में से पांचवी कहां से आ गई तो ये जैसे ना चारगी टीका की गाथाओं के नंबर हैं माने जी 80 टीका में 5-6 गाथाएं ज्यादा हो गई जैसे की टीका में लेकिन मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया इनमें दो बातें हो सकती हैं कि या तो जो मूल प्रवचन सार है उसमें वे ज्यादा गाथाएं थी और अमरचंदाचार्य को जो कॉपी मिली उस कॉपी में भी गाथाएं नहीं थी इसलिए उन्होंने टीका नहीं लिखी या ये भी हो सकता है कि अमरचंदाचार्य को वे जची नहीं इसके बीच में ये गाथाएं कुंद कुंद की होंगी इसलिए उन्होंने कोई टीका नहीं लिखी क्योंकि हमारे आचार्यों का ऐसा नियम है कि किसी गाथा की टीका नहीं भी लिखना हो तो वो सुगमम मेतत इतना लिख करके इतनी टीका जरूर लिखते हैं बिल्कुल खाली नहीं छोड़ते हैं दादा क्या लिखते हैं ये सुगमम मेतत क्या होता है कि ये गाथा बहुत सरल है अब इसका अर्थ में क्या लिखूं तुम समझ लेना सुगमम मेतत समझे ना तो उनको ये बहुत सरल लगी हूं और वो एक विषय चला आ रहा था और जिस तरह वो टीका लिख रहे थे और उनके बीच में ये अंतराय लगी हूं उनको हैं क्या बीच में नमस्ते की बात कहां से आ गई ये मंगलाचरण एक दफा कर लिया ना शुरू में अब काय को बार बार कर रहे कि वो शास्त्र में ऐसा लिखा है क्या लिखा है मंगलम हस्तम बुधई आदौ मध्य मसाने मंगलम भासतम बुधई मंगलाचरण कब करना चाहिए आदि में मध्य में और अंत में क्या आदौ मध्य बसाने च मंगलम भासतम बुधई वो बुद्धिमानों ने ये बताया है कि ऐसा मंगलाचरण करना चाहिए तो हमारे जो है ना नियम सार के टीकाकार पद्म मल्हारी जी फिर तो चाहना शुरू कर देते हैं बढ़िया गंभीर विषय चल रहा है बात चल रही है और बीच में मंगलाचरण शुरू कर देते हम अन्यनाथ की वंदना फलाने की वंदना जिस चैत्यालय में बैठे हैं जो भगवान सामने हैं तो बीच में एक सत्संग का लिख दिया और वहीं जा कोई प्रसंग नहीं दिखता कोई कारण नहीं दिखता ऐसा ऐसा कर दिया ऐसी जो गाथाएं आई दिखती हैं करने की बिल्कुल बात चल रही थी ना अब बीच में तो कुछ था नहीं नया अध्याय होता ना, सुनना मेरी बात, नया अध्याय होता हो पुराना खत्म हुआ होता तो भी मंगलाचरण लिख देते हैं। माने हर अध्याय में एक मंगलाचरण लिख देते हैं। एक तो ग्रंथ के अकेले शुरू में लिखते हैं, बाकी लिखते ही नहीं, दूसरे शुरू में लिखते हैं फिर अंत में लिखते हैं, तो तीसरे जितने अध्याय हों उन अध्यायों में मंगलाचरण लिख देते हैं और उस अध्याय से संबंधित जो विषय वस्तु होती है वो उसमें आ जाती है। जैसे अपना कर्ता कर्म अधिकार में अपन ने अपनी टीका में लिखा ना, तो हूँ कर्ता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्या, ये मंगलाचरण वहां लिख दिया। ऐसे बीच में लिख दे टीकाकार, तो कोई अध्याय भी तो खत्म नहीं हो रहा। जहां ये बीच में मंगलाचरण आ गया हो, वो जो मध्य है ना, वो ऐसा मध्य है कि दस अध्याय हैं, तो वो दस अध्याय के बीच में लिखा दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय का, जो टोटल मल जी ने लिखा ना, हर अध्याय के शुरू में मंगलाचरण लिखा है। लेकिन एक बात देखना, आठवें अध्याय के शुरू में मंगलाचरण नहीं, कोई ने देखा? पचासों दफे मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लिया होगा, लेकिन हरेक में मंगलाचरण है और आठवें अध्याय में मंगलाचरण नहीं है, ये किसी ने देखा? मेरी किताब में तो लिखा है क्लियर, फिर भी नहीं देखा, क्या करें? आठवें अध्याय में का मंगलाचरण नहीं लिखा और सातवें अध्याय के अंत में ये नहीं लिखा जो अंतिम वाक्य लिखते हैं ना, है? क्या वो अंतिम वाक्य नहीं लिखा उनने? ये चौथा अध्याय समाप्त हुआ या सातवां अध्याय समाप्त हुआ? तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला वहां पर अपने किताब में कि वे अभी कन्फ्यूजन में थे कि इनको हम दो अध्याय में रखें, चार अनियोगों का वर्णन और निश्चय व्यवहार संबंधी के जो है कि इन दोनों का एक ही लिखें। किनको कहते हैं? जैन साहित्य में अर्थ करने की पद्धति, जैन शास्त्रों का अर्थ करने की पद्धति ये है उनके पांच कौन से, सातवें और आठवें अध्याय में। तो दो अलग अलग हैं, एक चार अनियोग संबंधी और एक निश्चय व्यवहार संबंधी, दो हो गई। तो उनने इस दिमाग में नक्की नहीं कर पाया था, तो अभी चार निश्चय व्यवहार संबंधी लिखते जा रहे थे और चार अनियोग संबंधी भी लिखना शुरू कर दिए। लेकिन अभी इनको एक में रखें कि दो में रखें, यदि जब वो दो में रखना नक्की कर लेते तो इसमें वो अंतिम वाक्य लिख देते और उसका मंगलाचरण लिख देते। क्या तो हमारे किसी ने तो बात के लोगों ने ध्यान रखा ही नहीं, जो छपाने वाले थे करने वाले थे उनने फटाफट उसको आठवां अध्याय, अरे बहुत बड़ा हो गया। हम तो ऐसे ही करते हैं ना, सच बोलना आप लोग ईमानदारी से, आप जब कोई किताब छपाते हो हम तो कहाँ छपाते हो, तो उसमें पैरा तोड़ना पड़ते, पैरा तोड़ते ना, तो कैसे तोड़ते हो? बहुत बड़ा हो गया यार, इसे तोड़ दो, कहीं से तोड़ दो, ऐसा नहीं तोड़ा जाता है, वो टूटने लायक जगह होती है, उसे बहुत सोच समझ के तोड़ा जाता है और बहुत सोच समझ के जोड़ा भी जाता है कि इसको इसमें जोड़ दो और इसको इसमें तोड़ दो। क्यों? कि तुमने क्या किया मोक्ष मार्ग प्रकाशक के संपादन में, कि कुछ पैरे तोड़े कुछ पैरे जोड़े, बस ये किया। अरे ये कितना आसान नहीं है भाई साहब, तोड़ना और जोड़ना ख्याल में आए ना। तो वो उनको देखने को द्वारा मौका नहीं मिला। किनको? टोडरमल जी को, अपने ग्रंथ में अधूरा छूट गया, तो वे द्वारा जैसे देखते तो हो सकता बहुत करेक्शन करते। ये तो महाभाग्य की बात है कि पहली दफे उनका लिखा हुआ और वो भी पूरी तरह प्रमाणिक है, उसमें कोई कमी नहीं रही। अपना हो तो अपने तो रद्दी से रद्दी होगा, अपन तो 25 दफे देखते हैं मोटा निधि, ऐसा नहीं है, अपन देखते ही रहते हैं पढ़ते ही रहते हैं, फिर करेक्शन करते। अब हमारे देखो 30,000 छप गई ना वह किताब, कौन सी?
हाँ, जो फल देखने वाली, और अब तीसरा एडिशन छपरा 5,000, तो उसमें फिर हमने करेक्शन की। रात 12 बजे तक करेक्शन किए और फाइनल करके रख दी कि सुबह ये प्रेस में दे देंगे छपने को। फिर रात के फिर शुरू हो गया, तो सुबह 5 बजे फिर करेक्शन की। ये वीर सागर आ गया है? मेरे कहा वो बात हुई थी, वो तुम प्रमाण लाया खोज खाद के कितने दादा उसमें है इसमें। मैं तू ला मेरे को 10 बजे के पहले ला, 10 बजे किताब छपने में चली जाएगी। फिर लाया गया 6:30 बजे, दूसरा काम नहीं करने दिया ऐसे। मैंने चाय भी मांग नहीं पीने दी, चाय कैसे पीता, तो सुबह नहीं हुआ था। क्यों? तो अंत तक इसमें वो होता रहता है करेक्शन। इतना इतना महत्वपूर्ण था कि हाँ, मैं ये बार बार कह रहा था ना कि एकदम अन्नादिक त्यागने में, पानी त्यागने में जल्दी नहीं करना चाहिए, ये उल्टी तकलीफ हो गई। पहले लोग नहीं करते थे त्याग, और अब फटाफट त्याग कर देते हैं, और फिर वो मौत के मुख में चले जाते हैं। गवर्नमेंट को कदम उठाना पड़ा। अरे अपन पहले उठा लेते, क्यों पहले समझा लेते तो गवर्नमेंट को नहीं करना पड़ता। तो हमको ये मिली गोमट सार की कर्मकांड की 60वीं गाथा, जिसमें ये लिखा है कि उसका काल कितना होता है इसका, और उसमें ऊपर लगा ग्रस्तों की। अपने तो ग्रस्तों की लिखी, बार बार लिखी गई, मुनियों की नहीं लिख रहे हैं, मुनियों की नहीं लिख रहे, ग्रस्तों की संलेखना का। तो उसमें लिखा कि सबसे अधिक काल 12 वर्ष, सबसे कम काल अंतर मुहूर्त। क्यों? और मध्यम काल बीच में जितने चाहे जितना ले, अंतर मुहूर्त से लेके 12 वर्ष तक के बीच में कितना ही ले सकते हो। तो जो श्रावक का हुआ वो तो बेचारा उसमें ही जाएगा ना, जघन्य में। अंतर मुहूर्त कितना बड़ा होता है देख प्रवीण, हमको वो अंतर मुहूर्त नहीं सुनना है जो सबसे बड़ा है, हमें तो वो अंतर मुहूर्त जानना है जो सबसे छोटा है। सबसे छोटा अंतर मुहूर्त कितना बड़ा होता है वो बता। एक आदमी छावली, एक आवली, और आवली कितनी बड़ी होती है वो ही बता। सेकंड के असंख्यात में भाग, माने कम से कम सेकंड के असंख्यात में भाग पहले उसे ये चतुर्विध आहार का त्याग करना चाहिए, चतुर्विध का। वहां तो हम पानी पानी के लिए मर रहे थे, हम तो प्रमाण खोज रहे थे। विद्यानंद जी ने हमसे कही थी कि आप उस किताब में देखना, तो उस किताब में आपको ये मिलेगा क्या कि पानी की छोड़ने में जल्दी नहीं करना चाहिए। और मेरे को आदेश दिया था उनने कि तुम समाधि मन की सोच रहे हो ना, तो पानी छोड़ने में जल्दी नहीं करना। और प्रमाण दिया था कि फलानी किताब में लिखा है, हम खोज रहे थे जब से वह किताब में वो हमको वो नहीं मिल रही थी, श्लोक हो गया था। अब वो तो नहीं मिली भगवती आराधना की, क्या मिली बोलो? भगवती आराधना की विजयोदय टीका की वाला तो मामला भी और है, पड़ा है। तो उसमें जो खोज के निकाल के लाओगे तो चौथे एडिशन में सुधारेंगे। अब चौथा एडिशन भी 1 महीने के भीतर गारंटी से छपेगा, और सबको छापने की व्यवस्था के पैसे आ गए हैं मेरे पास, कीमत कम करने वाले के भी आ गए। आज वो कह रहा आया मेरे पास फोन है ना फ्यूज के, दादा अपन को 17,000 चाहिए थी, 23,000 हो गए, क्या करें क्या करें। मैंने कहा अपन को 1 महीने बाद द्वारा एडिशन में उसके बीच में शिविर होगा क्या, दो के ले ले, 1 महीने के भीतर दूसरा या चौथा एडिशन उसका गारंटी से छपेगा। मेरे कहने का मतलब समझ गए ना, तो अंत तक सुधरेगा। ऐसा काम है, ये अध्ययन का स्वरूप ही ऐसा है। देखो अपनी अभी अपन अभी ने ये पढ़ा था ना, देखो गाथा, हो स्वर्ग अर अपवर्ग पथ प्रदर्शक दिनेश्वर अभे जिनेन्द्र भगवान मन हे ऋषभ जिनेन्द्र भगवान ऋषभ देव भगवान मोक्ष के रास्ते को बताने वाले तुम ही हो और स्वर्ग के मार्ग रास्ते को बताने वाले भी तुम ही। अभी दोनों लिखा हम क्या करें, अब हम तो ये करें स्वर्ग का रास्ता नहीं, स्वर्ग का रास्ता नहीं, मोक्ष का ही रास्ता, मोक्ष का रास्ता। मंगलाचरण में लिखा हम क्या करें, हमने कहा था ना कि हम हजार तुम हजार लाएगा हम लाख लाएंगे, वो सब देखे हैं हमने। और जो हम बात कह रहे हैं वो सब देखने की बात कह रहे हैं। स्वर्ग अर अपवर्ग पथ दर्शक जिनेश्वर आप ही, ये अर्थ समझ में आया, उस प्राकृत भाषा का बिल्कुल सही अनुवाद है। लोकाग्र स्थित तप संयमी सुर असुर बंदित आप ही, लोक के अग्र में स्थित सिद्ध भगवान तपोसंयमी, सारे देवता और असुर इनके द्वारा आपकी वंदना की जाती है, आप हो उनके द्वारा भी वंदित, देवेंद्रों के देव। ये अनुवाद किया काय का है, प्राकृत में क्या है देखना, देखो तीन नफे देव है, देखो प्राकृत में तम देव देव देवम, सोचिए कभी ये तीन देव कहां से आ गए, अध्यात्म। इसका मैंने एक पद्य अनुवाद किया देव इंद्रों के देव, देवों के देव कौन है इंद्र, देव 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 कौन है इंद्र, और इंद्रों के भी देव महादेव कौन है अरंद भगवान आप, देव देव देवम। समझ में आया तीन देव कैसे हो गए, तो देवेंद्रों के देव, ये हिंदी अनुवाद है इसका, है ना, देवेंद्रों के देव यति वर विरसद कि हे आदिनाथ भगवान, देखा ना यति वर विरसद यदि वर बस हम, प्राकृत की तीसरी पंक्ति में देखो यदि वर बस हम, क्या हुआ इसका अर्थ है कि इति वर विश्वम माने आदिनाथ नहीं, घबराना नहीं, ऋषभ देव नहीं, तो क्या हुआ यति माने मुनि, उनके बर माने उनसे श्रेष्ठ माने गंधर्व देव, और उनमें भी जो ज्येष्ठ हैं, ऋषभ माने सबसे बड़े, ऋषभ माने बैल भी होता है और सबसे बड़े भी होता है, बड़े भैया बोलते ना इसे अपन, ऋषभ कनिष्ठ और वरिष्ठ जिसे बोलते हो ना, तो यति वर ऋषभ का अर्थ क्या होता है कि मुनियों के जो गंधर्व देव हैं उनके द्वारा भी पूज्य माने अरहंत भगवान, चाहे ऋषभ देव हो चाहे अजितनाथ हो चाहे संभवनाथ हो, सब चौबीस ही तीर्थंकर, वो भी लगा लो चाहे अकेले ऋषभ देव लगा लो, और तुम जैसे तेरे बीच भी ले लो क्या नुकसान है, है? और 170 ले लो, वो भूतकाल के भविष्य काल के ले लो, वे सब इति वर भृषभ में आ जाएंगे, समझ नहीं ना। एकदम एक छंद है अर्थशास्त्री के मंगलाचरण में विद्यानंद जी ने लिखा है शायद, वो आतन वो अकलंकम छंद, बोलो कौन है किसको आता है, विद्यानंद जी का हो या अकलंक का होगा अर्थशास्त्री का, उसने लिखा है हे भगवान आप कैसे हो, वृषभ माने बड़े हो, अकलंक हो, और अकलंक के द्वारा उसने दो तीन नाम आए हैं आचार्यों के, जो आचार्यों के नाम निकलते हैं, उस वक्त हमने पढ़ी थी जबरदस्ती चाल में, तो ऐसे भगवान जो तीन लोग के गुरु हैं उनको जो मनुष्य नमस्कार करते हैं वे अक्षय सुख संपदा लहें, वे अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं, तो मोक्ष में भी पहुंचा दिया। ऊपर कहा था कि स्वर्ग का रास्ता भी तुम बताते हो और मोक्ष का रास्ता भी तुम बताते हो, क्यों माने जेल में जाने का रास्ता भी तुम बताते हो और जेल से छूटने का रास्ता भी तुम तुम बताते हो तो इस तरह ये सामान्य गाथाएं हैं, और ये मंगलाचरण की गाथाएं बीच में आ गई हैं, लेकिन इससे उस जो 79 गाथा से 80 गाथा में कोई विघ्न खड़ा नहीं हुआ, मतलब वो उस संधि को ये तोड़ती नहीं है। ये तो सब बीच में मंगलाचरण की गाथाएं हैं, तो ये इसमें रखो तो ठीक और ना रखो तो ठीक। भगवान को याद करना कभी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, आगे बीच में कर ले। देखो, तप और संयम से सिद्ध हुए 18 दोषों से रहित वे देव स्वर्ग और मोक्ष मार्ग के प्रदर्शक, देवेंद्रों और असुरेंद्रों से पूजित और लोक के शिखर पर स्थित हैं, जो देवों के भी देव हैं, देवादि देव हैं, मुनिवरों में श्रेष्ठ हैं, 3 लोक के गुरु हैं, उनको जो मनुष्य नमस्कार करते हैं वे अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं। ये 3 गाथाएं जो बीच में आई थी तो उनको अपन ने पाठ किया। अब 80वीं गाथा में अपन प्रवेश करते हैं। पढ़ो भैया, बस 80वीं गाथा पढ़ो एकदम शांति से।
जो जान दियर हंता तवत्त गुणत्त पज्जयत्तेहिं सो जान दिया पालं मोहो खलु जादितस लयं द्रवे गुण पर्याय से जो जानते अरहंत को वे जानते निज आत्मा द्रव मोह उनका नाश हो।
उस समय तो हो गया है? हो गया 10-5 हो गए, अब आगे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बढ़ाएंगे भी तो क्या होगा 2-5 दिन में से, कल करेंगे।
सहजानंदी सो